हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। चौहान फैमिली से मिलकर आने के बाद अंकुश अपने घर आ गया था। उसने अपने डैड तेजेंद्र को वहां की अपडेट दी। अंकुश ने यही बताया कि उसने जैसे तैसे करके वेद को रिसेप्शन पार्टी थ्रो करने के लिए मना लिया है, जहां वो शिवांशा का सच सबके सामने लेकर आएंगे। इससे वेद की फैमिली भी उससे नाराज हो जाएगी। ऊपर से शिवांशा का राज खुल जाने के बाद उसकी मौत भी तय थी। तेजेंद्र उसके इस दांव से काफी खुश हुआ और वहां से चले गया। लेकिन उसकी मॉम लीला राजावत वहीं पर थी। वो नहीं चाहती थी कि शिवांशा मरे। वो शिवांशा को कैद करना चाहती थी। उसके इस फैसले से अंकुश भी थोड़ा हैरान था। अंकुश ने चौंकते हुए सिर हिलाकर पूछा, जहां तक मुझे पता है आप उससे बहुत नफरत करती हैं, फिर उसे जिंदा क्यों रखना चाहती हैं? तड़पाना चाहती हूं। न जाने क्यों उस लड़की को मारकर मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होता है। वो मेरा एक पसंदीदा खिलौने की तरह है। जब मन चाहा खेल लो, जब मन भर जाए पटक कर फेंक दो। मेरा पसंदीदा खिलौना तो इतना मजबूत है कि टूटता भी नहीं है। बस तभी मुझे वो चाहिए, लीला ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। पूरी राजावत हवेली में काम करने वाले लोग तक जानते थे कि लीला का स्वभाव कैसा था। दूसरों को रुलाकर और उन्हें मारपीट कर उसे खुशी मिलती थी। उनकी बात सुनकर अंकुश ने अपना सिर पकड़ लिया। वो बोला, कम ऑन माँ, आप अपना सैडिस्ट बिहेवियर थोड़ा कंट्रोल रखिए। न जाने आपको दूसरों का खून बहता देखकर इतनी खुशी क्यों मिलती है। आपके चक्कर में हमारे यहाँ काम करने वाले 3 हाउस हेल्पर की मौत हो चुकी है और केस दबाना बहुत मुश्किल होता है। तुम मुझे वो लड़की ला कर दे दो, इसके बाद मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगी, लीला ने अजीब सी मुस्कराहट के साथ कहा। लीला के बर्ताव की वजह से ज्यादातर फैमिली के लोग तक उससे बचकर रहते थे। हाउस हेल्पर बिना काम के उसके पास नहीं आते थे। मैं डैड के आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप किसी और को अपना खिलौना बनाइए, अंकुश ने जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने अपने मन में कहा, ऐसे कैसे आपको अपना फेवरेट खिलौना दे दूं मॉम, उसके साथ खेलने का हक नहीं है आपको। अंकुश के जाने के कुछ देर बाद मनन और अरवान भी वहां पर पहुंच गए थे। लीला ने उन्हें देखकर मुंह से कुड़ा और फिर अंदर चली गई। अरमान ने गहरी सांस ली और मनन से बोला, बस एक बार शिवांशा से बात हो जाए फिर हम अपने घर वापस चलेंगे। वैसे भी हमें यहां देखकर कोई खुश नहीं है। हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे, अपनी शिवी को साथ लेकर जाएंगे, मनन ने जवाब दिया। मनन की जिद के आगे अरमान कुछ नहीं कर सकता था। जब से उनकी माँ की डेथ हुई थी, वही मनन के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा कर रहा था। वरना उनके पिता देवेश तो अपने बड़े भाई तेजेंद्र के आगे पीछे ही घूमते थे। अरमान मनन को लेकर अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ वेद अपने कमरे में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म होते होते रात के लगभग 8 बज गए थे और डिनर टाइम होने को आया था। शिवांशा को कमरे से गए हुए लगभग 1 घंटे का टाइम होने को आया था, फिर भी वो अंदर नहीं आई। फिक्स 8 बजे पूरी चौहान फैमिली डाइनिंग टेबल पर आ जाती थी। वेद भी डिनर के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मैंने उस लड़की को क्लियरली कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहे, उनके साथ ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। मेरे इतना समझाने के बाद भी वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। वेद को लगा शिवांशा नीचे होगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर खुद पर काबू करके वेद नीचे पहुंचा तो शिवांशा को छोड़कर बाकी फैमिली मौजूद थी। वो हैरानी से सबकी तरफ देख रहा था, हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह न्यूट्रल थे, जिससे पता नहीं चलता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वेद को अकेले डाइनिंग टेबल पर देखकर आराध्या ने जल्दी से कहा, भाई आप अकेले क्यों आए हैं, भाभी कहाँ हैं? पिछली बार उनसे जो गलती हुई थी वो नहीं चाहते थे कि वापस से वो रिपीट हो, और शिवांशा उनकी लापरवाही की वजह से भूखी रहे। हाँ, वो आ ही रही है, मैं तो उसे बताना ही भूल गया कि हमारे घर में हम सब एक साथ फिक्स टाइम पर डिनर करते हैं, मैं ही उसे बताना भूल गया, वेद ने अनजान बनते हुए कहा। वो वापस जाने को मुड़ा ही था तभी अक्षत बोला, अरे भाई आप वापस ऊपर क्यों जा रहे हो, मैं देखता हूँ ना, मैं बुला लेता हूँ भाभी को। अरे नहीं, मैं ही बुलाता हूँ, मुझे याद आया कि मैं अपना फोन भी ऊपर भूल आया हूँ, कुछ जरूरी डिटेल्स भी देखनी थी, वेद ने बहाना बनाया और फिर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। अक्षत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने उन सब की तरफ देखकर धीरे से कहा, मुझे भाई का ये नया रूप अच्छा लग रहा है, देखा नहीं भाभी से मिलने के लिए किस तरह बहाने बना रहे थे, जबकि दोनों साथ में ऊपर ही थे। अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करो, जितना तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, भाई ऐसे लोगों में से नहीं है जो लवी डवी बनकर घूमे और जिन्हें बहाने बनाने की जरूरत पड़े, वंश ने उसे झिड़कते हुए कहा। अक्षत की तरह आराध्या भी मुस्कुरा दी थी। वहीं नव्यांशी अभी भी उनके रिश्ते को शक भरी निगाहों से देखती थी। नव्यांशी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने अपने मन में कहा, न जाने मुझे ही इनका रिश्ता इतना क्यों खटक रहा है, जबकि सब एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भाई उस लड़की के साथ खुश नहीं है और किसी मजबूरी के चलते साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में ही उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ी हो। जो भी हो, मुझे इस रिश्ते का सच पता लगाना ही होगा। इसमें एक ही इंसान मेरी हेल्प कर सकता है। नव्यांशी के दिमाग में इस वक्त अरमान का चेहरा घूम रहा था। वो उससे हेल्प लेना भी चाहती थी, लेकिन उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उनसे अलग वेद शिवांशा को ढूंढते हुए ऊपर पहुंचा। उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि पहले भी उसने शिवांशा को अकेले वहां पर 2 से 3 बार देखा था। वेद का शक बिल्कुल सही निकला। शिवांशा हमेशा की तरह खुद में सिमटी हुई बैठी थी। वो नींद के आगोश में थी। नींद में तो वो और भी मासूम लग रही थी, बिल्कुल शांत और ठहरा हुआ मासूम सा चेहरा। वेद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसने आईज रोल करके कहा, जब देखो सोती रहती है और इसे सोने के लिए यही जगह मिलती है क्या? नींद आ रही थी तो रूम में ही सो जाती। वेद ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ हवा में ही रुक गया था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांधी और फिर उसे वापस पीछे कर दिया था। भले ही मैं तुम्हें उन सबसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं और तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, लेकिन वेद सिंह चौहान के उसूल कभी गवारा नहीं देंगे कि वो एक लड़की को बुरी नजरों से देखे या गलत तरीके से टच करे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील करो, वेद ने शिवांशा के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से कहा। वेद तुरंत कमरे में गया और पानी की बॉटल के साथ बाहर आया। उसने शिवांशा के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे तो उसकी नींद टूट गई थी। अचानक वेद को अपने सामने देखकर शिवांशा हड़बड़ाकर उठने लगी और इस चक्कर में उसकी साड़ी खुल गई थी। वेद ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो वहीं शिवांशा ने शर्मिंदगी के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, शिवांशा ने हड़बड़ाकर कहा और जल्दी जल्दी अपनी साड़ी सही करने लगी। मैंने कब कहा कि तुमने जानबूझकर अपनी साड़ी निकाली है? तुम पागल हो नहीं जो ये करोगी? और तुम्हें सोने के लिए यही जगह मिलती है क्या? किसी और ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, वेद ने उसे डांटते हुए कहा।
आपने तो कहा था कि आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है। इस फ्लोर पर मौजूद कमरे और बाकी जगह पर आपका जरूरी सामान रखा है। मैं बिना इजाजत के कैसे अंदर जा सकती हूँ? सिर्फ ये बालकनी ही बचती है तो यहाँ आ जाती हूँ, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी उसकी साड़ी की प्लेटिंग सही नहीं हो रही थी, उल्टा वो उन्हें और उलझा रही थी। वेद ने आगे कुछ नहीं कहा। लगभग 5-7 मिनट बाद उसे लगा कि शिवांशा अब तक अपनी साड़ी पहन चुकी होगी, तो वो उसकी तरफ पलटा। उसने देखा कि वो अभी भी अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। शिवांशा का तो ऊपर की तरफ ध्यान भी नहीं था। तभी अचानक वेद उसके पैरों के पास बैठा और उसकी साड़ी को पकड़कर बोला, क्या तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो? थोड़े बहुत काम करने आते हैं, पर मैंने आपको कहा था कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, आपने ही जिद की थी, शिवांशा ने जवाब दिया। वेद की हेल्प से वो साड़ी पहनने लगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें शॉर्ट्स पहनने की परमिशन दे दूं? वेद ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर शिवांशा की तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा। शॉर्ट्स का मैंने भी नहीं कहा, लेकिन सूट तो पहन नहीं सकती हूं ना, बाकी सब भी तो अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, शिवांशा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। उसे लगा वेद मान जाएगा। वेद ने ना में सिर हिलाया और कहा, लेकिन तुम्हें अपनी मर्जी से जीने की इजाजत नहीं है। कल से एक टीचर लगा दूंगा जो तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देगा, लेकिन पहननी तो यही पड़ेगी। वेद ने शिवांशा की साड़ी पहनने में हेल्प कर दी थी। वो उठ गया। अचानक शिवांशा के मुंह से निकला, आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं ना? इतना कहकर जल्दी से उसने अपनी नजरें झुका लीं। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ मुश्किल बनानी है, वेद ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर शिवांशा ने नजरें झुकाकर उसकी गहरी भूरी आंखों में देखा। एक पल के लिए वो उन आंखों में खोने लगी थी, लेकिन तुरंत उसने अपनी पलकें झुका ली थीं। कोई काम था क्या? शिवांशा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हाँ, डिनर का टाइम हो गया है, आगे से 8 बजे तक खुद ही नीचे पहुंच जाना, वेद बोला और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, लेकिन शिवांशा वहीं पर खड़ी थी। शिवांशा ने पीछे से कहा, मुझे भूख नहीं है, शाम को इतना सारा खाया था, वेद उसकी तरफ पलटा और उठकर बोला, फिर भी खाना पड़ेगा, अगली बार मुझे डॉक्टर के सामने ये नहीं सुनना कि कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। पर सच में मुझे भूख नहीं है, शिवांशा ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत ही खा लेना, मुझे बहस करने की आदत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो, वेद ने इस पर सख्त आवाज में कहा, तो शिवांशा ने भी आगे कोई जवाब नहीं दिया। वेद तेज कदमों से चलकर नीचे जा रहा था। उसे मैच करते हुए शिवांशा उसके पीछे आने लगी, लेकिन वो अपनी साड़ी में अटक कर नीचे गिर गई थी। वेद ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो शिवांशा की प्लेटिंग फिर से बिखर गई थी और वो साड़ी के साथ जमीन पर नजरें झुकाकर बैठी थी। एक काम करो, इसे समेटो और कमरे में पहुंचो, मैं खाना पहुंचा दूंगा, आगे से प्रॉपर पिनअप कर लेना, वेद ने इरिटेट होकर गहरी सांस लेकर कहा। वो दूसरी तरफ पलटा और झुंझलाकर बोला, बेवकूफ लड़की, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, भले ही उन्हें कुछ नहीं आता हो फिर भी खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, इतना भी नहीं पता कि साड़ी को सेट करने के लिए पिंस लगानी पड़ती हैं। शिवांशा के कानों में जब वेद की आवाज़ पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो धीरे से बोली, क्या उन्होंने मुझे बच्चा कहा? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि साड़ी को सेट करने के लिए पिंस चाहिए होती हैं, लेकिन पिंस का होना भी तो जरूरी है, ये समझते क्या हैं खुद को? जरूरी नहीं होता कि इंसान की उम्र बड़ी हो तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती हो, कम उम्र के लोग भी मैच्योर हो सकते हैं। शिवांशा का मुंह बन गया था, उसने जल्दी से साड़ी उठाई और कमरे के अंदर चली गई थी। पूरे दिन भर हैवी साड़ी के अंदर रहना उसके लिए मुश्किल था। शिवांशा ने एक लाइट सी साड़ी निकाली और फिर उसे अच्छे से सेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ वेद नीचे पहुंचा और बोला, उसका खाना ऊपर भिजवा दो, और आराध्या, वन मोर थिंग, मुझे एक ग्रूमिंग टीचर चाहिए जो उसे हर एक छोटी चीज सिखा सके। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? आप इरिटेट लग रहे हो, वंश ने उसका चेहरा देखकर पूछा। वेद शिवांशा की साड़ी की वजह से सच में काफी इरिटेट हो गया था। उसने सिर हिलाकर अचानक कहा, हाँ, क्योंकि मैं इरिटेट हूँ, उस लड़की को साड़ी तक नहीं बांधनी आती है, यू वोंट बिलीव, दिन में 10 बार गिरती पड़ती रहती है। बोलते हुए वेद चुप हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि उसके अचानक इस तरह इतना खुलकर बोलने की वजह से अक्षत और आराध्या हंस रहे थे। जब भी नव्यांशी को उनके रिश्ते पर शक होता था तब कुछ ऐसा हो जाता था जिससे खुद बखुद उसका शक दूर हो जाता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, भाई को लेकर मैं हमेशा से पजेसिव रही हूँ, तभी शिवांशा भाभी का आना बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, इनका रिश्ता भी बाकी कपल की तरह नॉर्मल है, नव्यांशी ने मन ही मन कहा और अपना ध्यान खाने में लगाने लगी। वहीं ऊपर शिवांशा की साड़ी खुलने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अंकुश ने उसे जो बॉटल दी थी वो नीचे गिर गई थी और इस वक्त रानी के हाथ लग गई थी। ये क्या है, जरूर कोई काम की चीज होगी, वेद भैया के फ्लोर पर कोई आता नहीं है, जरूर उनकी ही होगी है, मैं जाकर सीधे वेद भैया को दे देती हूँ, वरना गुम हो गई तो मुझे ही डांट लगाएंगे, रानी ने सिर हिलाकर कहा और उस बॉटल को लेकर सीधे डाइनिंग एरिया में वेद के पास जाने लगी। वेद भैया, वेद को पॉइजन की बॉटल मिल गई तो शिवांशा भाभी, शिवांशा का क्या होगा, आई डोंट नो, बाकी आई नो आपको शिवांशा को देखकर आपको दया आती है, पर अभी तो आपने उसकी जिंदगी के 10% हिस्से को भी नहीं जाना।